समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 15th of February 2025। सो मनोज, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमरीका की एक सार्थक और रचनात्मक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली अमरीका यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय चर्चा कल देर रात शुरू हुई और करीब 4 घंटे तक चली। इसमें सीमित प्रारूप में चर्चा और बड़े प्रतिनिधि मंडलों के साथ रात्रि भोज पर विस्तार से चर्चा शामिल थी। चर्चा में रणनीतिक सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक वचनबद्धता, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों शामिल थे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट लॉन्च किया। इससे सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसरों को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने मिशन 500 लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल दोतरफा व्यापार को दोगुना से अधिक करके $500 बिलियन करना है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहु क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में रक्षा सहयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय ढांचे को अंतिम रूप देने की योजना की भी घोषणा की। ये एक ऐसा ढांचा है जो 2025 से 2035 तक चलेगा और इस साल के अंत में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। उन्होंने भूमि और वायु प्रणालियों के साथ साथ सह उत्पादन समझौतों सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए चल रही रक्षा खरीद वार्ता को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों के अपने दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने मार्से में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का भी संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Ukrainian counterpart Andriy Sybiha on the sidelines of Munich Security Conference in Germany late last night. The two leaders discussed ongoing efforts towards resolution of the Ukraine conflict. Dr. Jayashankar also met Defense Minister of Germany Boris Pistorius. Their talks revolved around bilateral cooperation and the Ukraine development. The External Affairs Minister met Minister, President of Bavaria State of Germany Marcus Soder in Munich. They discussed India-Germany economic and technology cooperation. In his first engagement at the conference, Dr. Jayashankar spoke during a panel discussion on the topic Live to Vote Another Day, Fortifying Democratic Resilience. Norway's Prime Minister Jonas Gahr Støre, US Senator Elisa Slotkin and Warsaw Mayor Rafal Troskowosk were also present at the panel discussion. External Affairs Minister expressed optimism over the direction of India's democracy. He highlighted India as a democracy that delivers. He spoke about how the elections are conducted in India and mentioned about recent elections in Delhi and parliamentary elections held last year.
We just had an election in my state, just over. Last year, we had a national election. In Indian elections, roughly 2/3 of eligible voters vote. At the national election, electorate of about 900 million, about 700 million voted. We count the votes in a single day. Nobody disputes the result after it's announced. And if you look from the time we started voting in the modern era, 20% people more vote today than they did decades ago. So the first message that somehow democracy is in trouble globally, worldwide, I'm sorry, I have to differ with it.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ हो गई। वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले पहुंचना होगा और 10 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। CBSE ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी।
Loksabha Speaker Om Birla has constituted a 31-member select committee to examine the new income tax bill. The panel will be headed by BJP MP Bijayant Panda and it will submit its report by the first day of the next session. The Income Tax Bill 2025, which aims at consolidating and amending the law relating to income tax, was introduced in the Lok Sabha on Thursday. While introducing the bill, Finance Minister Nirmala Sitharaman had urged the Lok Sabha Speaker to refer the draft law to a select committee of the House. Speaking on the bill, Ms. Sitharaman said that the new legislation has fewer sections and chapters in comparison to the existing Income Tax Act and it has been simplified for easy comprehension by the common people.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली पहल काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया जाएगा। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों और कलाकारों को अपने ज्ञान, संस्कृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस वर्ष प्रतिभागियों को प्रयागराज में महाकुंभ देखने और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को और अधिक जीवंत बनाने के लिए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के तमिल मूल के लगभग 200 विद्यार्थियों का एक दल भी इसमें भाग लेगा। 10 दिन के इस कार्यक्रम का समापन 24 फरवरी को हो जाएगा।
Central team led by Union Minister Prahlad Joshi held a meeting with farmers' representatives to discuss their various demands in Chandigarh yesterday, with both sides agreeing to meet again for next round of talks on the 22nd of this month. Talking to media after the meeting last evening, Mr. Joshi said the meeting was held in a cordial atmosphere. He said during the meeting, the farmers were informed about several steps taken by the Narendra Modi government for the welfare of the farming community. The minister said Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan will attend the next meeting. Farmer representatives from two forums, the United Kisan Morcha Non-Political and Kisan Mazdoor Morcha, participated in the meeting. A total of 28 farmers, including leaders Jagjit Singh Dhaliwal and Sarvan Singh Pandher, took part in the discussions.
अब खबरें महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में करीब 15,000 सफाई कर्मचारी आज एक साथ सबसे बड़े सफाई अभियान में भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इससे पहले कल महाकुंभ में 2 शानदार विश्व रिकॉर्ड बने। पहले रिकॉर्ड में कुंभ विश्व सबसे बड़ा पर्व बन गया, जिसमें 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कल नदी सफाई का सबसे बड़ा अभियान चला कर दूसरा विश्व रिकॉर्ड बना। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ मेला प्राधिकरण आज मेला क्षेत्र में एक साथ समन्वित सफाई अभियान में 15,000 प्रतिभागियों को शामिल कर विश्व रिकॉर्ड हासिल करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर महाकुंभ के मूल मूल्यों को उजागर करना है, साथ ही प्रमुख स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के संदेश को मजबूत करना है। महाकुंभ दुनिया का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष भागीदार रहे। त्रिवेणी संगम पर अब तक 50 करोड़ 11 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसे मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ा समागम माना जा रहा है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
And now, Mukesh, after the national and international news, let's move into sports. Turning on to the world of sports, here's the latest update. In squash, the Indian girls and boys teams both have advanced to the semifinals of the Asian Junior Team Championship in Hong Kong. And we have a report.
The Indian girls team finished second in Pool B to seal a spot in the last four. Anahat Singh won all her matches 3-0 in the pool stage. Now the girls team will face home favourite Hong Kong in the semi-finals today. On the boys' side, India defeated Hong Kong to enter the semi-finals. They will now take on Malaysia today for a spot in the final. Moving on to Women's Premier League WPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Gujarat Giants by 6 wickets in the opening match at Kotambi Stadium in Vadodara last night. Chasing a target of 202 runs, Royal Challengers Bengaluru overhauled the score for the loss of 4 wickets and 9 balls to spare. Richa Ghosh was adjudged the player of the match for her unbeaten innings of 64 runs. Today, Mumbai Indians will take on Delhi Capitals in Vadodara. Moving ahead, the 38th National Games of India in Uttarakhand concluded yesterday with a spectacular closing ceremony. Haryana emerged as the second runner-up, Maharashtra claimed the first runner-up position, while the overall champions were the Services Sports Control Board, who dominated the event with 68 gold, 26 silver and 27 bronze medals. Now, Meghalaya will host the 39th edition of National Games in 2026, ushering in an exciting new chapter for this prestigious competition. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
Ab Mahanagaron ke samachar.
Ji Manoj, I'll begin with Chennai Metro first. Ji. Solar power generation in Tamil Nadu reached a new high this week. Peak generation was recorded at 6,516 megawatt and 48.20 million units of power was injected into the grid, making a record for both peak generation and overall absorption. TANGEDCO officials said that increase in solar power generation is due to sunny and bright days across the state, as well as increase in the installed capacity of solar power. Aur ek news aur hai Chennai Metro se, Manoj. Police arrested an idli batter making owner for the possession of rice meant for the public distribution system. 322 kilograms of PDS rice, 500 kilograms of idli batter and 3 grinders for the unit was arrested. The authorities acted on a specific input and conducted the raid. Moving on to Bengaluru Metro, Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil has informed that the 4-day global investors meet that concluded yesterday in Bengaluru was successful, bringing in a record 10.27 lakh crore rupees investments that can create 6 lakh jobs. Addressing the media persons, he said that several prestigious companies have shown interest in large-scale investments. He added that 75% of the investments are outside Bengaluru and 45% among them will be in North Karnataka. Primarily, the investment proposals are in manufacturing and energy sectors. Among the major investors are Jindal Group investing 1.2 lakh crore rupees in the energy, cement, iron, steel and related industries. The minister reaffirmed the plan to set up new industrial parks in Tumkur and Vijayapura, a startup hub in Hubballi and a deep tech park at location yet to be decided. और जो मेरे पास आखिरी खबर है वो है हैदराबाद से, मनोज
जी।
The iconic British-era Secunderabad railway station building facade is now undergoing a major revamp, and these works to reshape the station as the entrance facade is being demolished. The authorities are demolishing the walls of the main entrance of the building, which has a history of decades. The Nizams at first dedicated the Secunderabad railway station to the people of the princely state of Hyderabad in 1874. The central government subsequently renovated the structure in 1950. Meanwhile, the upgradation works of the railway station are underway at a brisk pace. The railway officials said the majority of the construction work has been completed. The redevelopment works are underway at a cost of 700 crore rupees. The redeveloped station will have 6-floor multi-level car parking on one side of the station. South Central Railway General Manager Arun Kumar Jain informed that redevelopment work is being taken up with the least inconvenience to the passengers. He said the new station building will have modern architecture and world-class amenities for the rail passengers. और बाकी की मेट्रो खबरों के लिए हम चलते हैं आपके पास मनोज
जी. रेणु, पहले दिल्ली की खबर. दिल्ली पुलिस ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए राजधानी के पुलिस मुख्यालय में एक साइबर सुरक्षा बूथ स्थापित किया है. राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बूथ का उद्देश्य मोबाइल फोन और स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित करना है. दिल्ली पुलिस के साइबर सुरक्षा बूथ में कई विशेषताएं हैं, जैसे मैलवेयर पहचान, जो मोबाइल फोन और बाहरी स्टोरेज डिवाइसों पर मैलवेयर, वायरस और बैकडोर की पहचान करता है. बूथ का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल को कनेक्ट करना होगा और ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करना होगा. यदि मैलवेयर का पता चलता है तो उपयोगकर्ता सीधे बूथ से मैलवेयर फाइलों को हटा सकते हैं. अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में अगले 6 महीनों के भीतर नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने नए कानूनों को लागू करने में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है. उन्होंने कहा कि 7 साल से पुराने मामलों के लिए फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 27 वैन तैनात की गई है. उन्होंने बताया कि राज्य के 90% से अधिक पुलिस बल को पहले ही नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है. ऑनलाइन सुनवाई के बारे में श्री फडणवीस ने कहा कि राज्य विशिष्ट कक्ष स्थापित करने पर काम कर रहा है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सके. 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मामलों के एक मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका की मंजूरी दिए जाने के साथ श्री फडणवीस ने सभी दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. अब कोलकाता की खबर. कोलकाता शहर में पाइप गैस कनेक्शन सेवा 2026 में शुरू हो गई. अभी इस सेवा से संबंधित जरूरी काम चल रहा है. अब तक 795 किलोमीटर पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी है. बंगाल गैस कंपनी और गेल के कार्यकारी निदेशक अनुपम मुखोपाध्याय ने कहा कि कोलकाता के न्यू टाउन इलाके को पहला कनेक्शन मिलेगा. शहर के अन्य क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से सेवाएं शुरू की जाएंगी. और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल. दिल्ली में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. यहां का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. और कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ हो जाने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेणु से.
थैंक यू मनोज. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज. एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज. द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 18 degrees Celsius and a maximum of 34 degrees Celsius. And let's move on to what happened on this day in history, Manoj.
Yeah.
Or pata hai, history is very important, you know, because it can help us to understand the world, our place in it, and how to make sense of the present. Or ye bhi ek aur achhi jankari hai ki it can also develop us, help us develop empathy, critical thinking skills, and a sense of identity. And so, on this note, let's begin with the year 399 BC, in jahan pe on this day the Greek philosopher Socrates was sentenced to death in Athens for corrupting the minds of the youth. And if we go to the year 1903, in this on this day the first teddy bear soft toy went on sale by inventor and toy maker Maurice Mitchum. And on the same day in 1923, Greece became the last European country to adopt the Gregorian calendar.
जी हाँ, 1967 में आज ही के दिन भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए और 1976 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। 2000 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा को आज ही के दिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया।
And Manoj, that was a beautiful song from
B.R.
Chopra's movie. Yes, I think the movie was Dhund. Yes, beautiful song. And on the same day, that is 15th of February 1932, American boxer and Olympic gold medalist Eddie Egan became the first of the only two people ever to win an Olympic gold medal in both summer and winter games in separate events. And in 2017, the Indian space rocket PSLV C-37 made history by successfully launching 104 satellites in a single flight on this day, that is the 15th of February.
और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
जी।
तो रेणु, आप ध्यान से सुनना।
जी बिल्कुल।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आज पुण्यतिथि है महान शायर गालिब अथवा मिर्जा असदुल्ला बे खां की। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। उन्हें सारी दुनिया मिर्जा गालिब के नाम से जानती है। इनको उर्दू फारसी का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। गालिब के लिखे पत्र, जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
And today we are paying tributes to Nathaniel Adams Coles, or professionally known as Nat King Cole, alternatively billed as Nat King Cole, an American singer, jazz pianist, and actor. And Cole received numerous accolades during, including a star on the Hollywood Walk of Fame and a special achievement Golden Globe Award. Posthumously, Cole has received the Grammy Lifetime Achievement Award. Or before we talk more or we go on to the next personality, let's sing into this beautiful song sung by Nat King Cole, When I Fall in Love.
When I fall in love, it will be forever. Or I'll never.
चमक उठी 1957 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रचना थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, आज पुण्यतिथि है हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रहीं, किंतु उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल में यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया।
और अब चलें हम बर्थडेज और बर्थ एनिवर्सरीज के पास।
एक और पुण्यतिथि ले लेते हैं
जी, बताइए।
आज पुण्यतिथि है संध्या मुखर्जी की। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1931 ढाकुरिया कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय गायिका थी जो मुख्य रूप से बांग्ला गायन में रुचि रखती थी। बंग विभूषण से सम्मानित और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था।
Today is the birthday of Ashutosh Gavarikar, who is an Indian film director, actor, screenwriter and producer who works in Hindi, Indian Hindi cinema. He is known for directing films set on a huge canvas while boasting of an opulent treatment. Aur agar hum unki movies ki baat kare to social drama Swadesh hai, sports drama Lagaan hai, epic historical romantic drama Jodha Akbar hai, which won the Filmfare Award for Best Film and Best Director for Lagaan and Jodha Akbar. और यहाँ पे हम पहले थोड़े से गाने सुन लेते हैं इनकी मूवीज से।
गहरा है फूल से खुशबू, खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। चल रहा ही यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया।
आज जन्म दिवस है अभिनेता रणधीर राज कपूर का। उनका जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं। पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने बॉलीवुड में बतौर बाल कलाकार के तौर पर डेब्यू किया था।
ये लड़ाई, ये झगड़े, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मैं भी कर चुका हूँ। मेरे अमित भैया कहा करते थे कि इस रास्ते पर बर्बादी है, सिर्फ खून ही खून, पर मैं न माना। और एक दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खून में देख चुका हूँ और दोबारा नहीं देखना चाहता।
गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम।
मनोज, वी कैन कीप लिसनिंग टू दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, बट वी हैव अदर पर्सनालिटीज ऑल्सो टू टॉक अबाउट। और आज बर्थडे है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर, समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलीमैथ। ही वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ पीसा, देन पार्ट ऑफ द डिची ऑफ फ्लोरेंस। गैलीलियो हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न ईरा क्लासिकल फिजिक्स एंड द साइंटिफिक मेथड एंड मॉडर्न साइंस। ही स्टडीड स्पीड एंड वेलोसिटी, ग्रेविटी एंड फ्री फॉल, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इनर्शिया, projectile motion, and also worked in applied science and technology. Hats off to this man.
आज जन्म दिवस है लेखक, प्रस्तुता, आवाज के कलाकार, समाचार वाचक, दस्तावेजी सिनेमा और कॉरपोरेट फिल्मों के निर्माता हरीश भिमानी का। उनका जन्म 15 फरवरी 1946 में हुआ था। हरीश भिमानी ने अपने करियर में 22,000 से भी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स की हैं। हरीश भिमानी ने बीआर चोपड़ा कृत भारतीय टीवी धारावाहिक महाभारत में सूत्रधार समय को आवाज दी थी और देश में सर्वाधिक पहचाने जाने वाली आवाज बन गए। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में नरेशन श्रेणी में राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया।
मैं समय हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था।
और अब समय है आपसे विदा लेने का। तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार
नमस्कार।